हरी हरी बोल सावलिया सेठ री जे मेघराजारी जे जोधप्रियारी जे राम 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 बैठो अंदाता अंदात्री बिराजो आए है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते
वासुदेवाय वासुदेवाय
वासुदेवाय
प्रीतिदेवाय
प्रीतिदेवाय
भक्तिदेवाय
भक्तिदेवाय
ममदेवाय
ममदेवाय
प्रभुदेवाय
प्रभुदेवाय।
वास्तव में भगवान ही सबका हितेशी और सबके साथ है। भगवान जैसा साथी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। दुनिया के कितने साथी मिले छूट गए, लेकिन भगवान एक सेकंड भी आज तक हमारे से नहीं छूटे। भगवान जैसे साथी जिसकी सत्ता से आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही, और सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता, सूरज प्रकाश देता है, चंदा चांदनी देता है, वायु देवता हवा देता है, मेघ देता है, लेकिन उसमें सत्ता किसकी। हरि ओम ओम राम 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 राम। अरे बोले बाप जी काई करो, राम 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 तो जमानो गियो, के हवे राम राम थी काई मले, कोई काम धंधो करो के राम राम थी काई मले को। एक संत महात्मा को ले गए और उसका आईएएस ऑफिसर कलेक्टर की नियुक्ति होने वाली थी, सिलेक्शन हो गया था, उनको बुलाया कि आ जाओ आप भी संत आए हैं। तो होनहार कलेक्टर की पोस्ट वाले लड़के ने पूछा कि बाप जी कुछ उपदेश दो। बाप जी ने बोला प्रेम से राम राम करो। बोले वी नो राम राम बट यू से फॉर आप हमारे लिए कुछ जरा बढ़िया बोलो, राम नाम तुम जानते हैं। अरे बोले साले गधे क्या तुम राम राम जानते। अब कलेक्टर को साले गधे बोल दिया, हद हो गई, मुंडा तो उतर गया न, खून उखलने लगा न, मुठियां भरने लगे न, होठ चबाने लगा। दूसरा कोई होता तो मैं दिखा देता थी बाप जी हैं कि क्यों गए। बाप जी भी चुप और बेटे जी भी चुप, सब थोड़ी देर चुप हो गए। बाप जी जानते हुए फिर भी अनजान होके बोले, भाई क्या बात है, कुछ प्रश्न उत्तर करो, सत्संग की बात हुए। राम सुखदास जी महाराज प्रश्न करके सत्संग शुरू करते थे। जो मारवाड़ी है और राम सुखदास जी का दर्शन सत्संग नहीं सुना, वो हिंदुस्तानी मारवाड़ी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम सुखदास जी महाराज का तो सत्संग दर्शन जिन्होंने किया है वो हाथ ऊपर करो, सबको धन्यवाद है, शाबाश। तो ऐसे लोग संत भाई कुछ पूछ लो। अपने आश्रम में भी पधारे थे राम सुखदास जी, और मैं भी उधर हरिद्वार जाता था ऋषिकेश, कुछ पूछो। मैं क्या क्या ही पूछना। तो वो संत ने कहा भाई कुछ पूछ लो। बोले बाप जी क्या पूछे, अभी अभी कलेक्टर ने कुछ पूछा और आपने सुना दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। बाप जी बोले मैं तो कुछ नहीं सुनाया। तो कलेक्टर बोला क्या नहीं सुनाया आपने, सब सुना दिया मेरे को। तो ये तो आप संत आदमी है मैम, और मेरा तो खून उबल रहा है, मेरा तो ऐसा है, मेरी तो पोस्टिंग हो गई था, अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनूंगा, ऐसा करूंगा। वो तो अंदर जो था अहंकार उखलने लगा। बोले बेटा तू साला और गदा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम को नहीं जानता है। तू बोलता है मैं जानता हूं राम नाम को, इसीलिए मैंने प्रयोग किया कि तू राम नाम को जानता है कि गालियों को जानता है। गाली से तेरा खून उबलने लगा तो राम नाम से तेरा दिल ठरा क्यों नहीं, तेरे आंखों में चमक क्यों नहीं आई। राम शब्द से एक बार राम का रकार बोलते तो हमारे सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व सक्रिय होता है, और राम का मकार बोलते तो चंद्र तत्व, हम जो भी रोजी रोटी जो भी खाते हैं उसमें सूरज और चंद्र की ही कृपा होती है। सूरज की रोशनी न मिले, चंदा की चांदनी न मिले तो हमारा माँ के पेट में बढ़ना भी संभव नहीं। शुक्ल पक्ष में गर्भ बढ़ता है, चंदा की चांदनी से ही हमारा शरीर बढ़ा, सूरज की रोशनी से ही खेत खली में और चंदा की चांदनी से ही सब बनता है। तो वही राम के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व हमारे अंतर आत्मा की चेतनाओं को जगाता है। तो राम नाम को तू कहाँ जानता है, राम नाम को जानता होता तो चार पैसे की नौकरी का तेरे को लेटर मिल गया तो अभिमान करता है। दुनिया सदियों से राम तेरे साथ है उसका तो तुझे पता ही नहीं। जो नौकरी पाके पद पाकर रुपया पाकर अपने को बड़ा मानता है वो कितना लाचार आदमी है, कतरो लाचार मनक है। पिया मल्या तो के मुँह मोटो, तो पिया री मोटा ये थारी मोटे कटे गिफ्ट दिख रहा नहीं बाप जी में तो आप हाँ हो जाएगा। तो जो धन जोबन मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मली जावे गो, पासो नहीं आवे गो, काई रे लायो भाया काई लई जावे गो, धन जोबन थारा जोर जवानी अठे मिली जावे गो, वीरा माटी में मली जावे गो। जो चीज छोड़ के जाना है उसका गर्व करना कितनी नादानी, और जिसको कभी नहीं छोड़ना उसको दूर मानना परे मानना पराया मानना कितना बुद्धि का दोष है। ये पाश्चात्य जगत ने भगवान को दूर कर दिया, और जो दूर है उस विकारों को अहंकारों को चिंताओं को माथे पे छाती में जीवन में उतार दिया। विदेशी चैनलों ने विदेशी मीडिया ने ऐसा कर दिया कि भारत का लोग भी अब विदेशी लोगों की नाई परेशान होने लगा। पहले तो एक कमाता था सो खाते थे, अब तो लेडी भी कमाती लेडा भी कमाती तो भी घर में पूरा नहीं शांति नहीं, ये दुर्दशा आ गई है। और फिर जरा जरा बात में चेकअप कर लो, ये चेकअप कर लो, अब जरा सा थोड़ा बुखार है, अब ये सीजन है, पाचन कमजोर है तो जो पहले खाता था ऐसा खाएगा तो शरीर में कच्चा रस बनेगा, कच्चा रस को पकाने के लिए प्रकृति बुखार देती है, अब बुखार में भी खाता रहेगा तो और भारी पड़ेगा। तो उपवास करे, नीम के पत्ते थोड़े डाल दे, तुलसी के पत्ते डाल दे, दो चार काली मिर्च डाल दे, छोटा थोड़ा सा गुड़ डाल दे, काढ़ा बना के पिए, अपने आप बुखार मिटे। बोले चेकअप करो, बोले टाइफाइड हो गया, और मेरा रसोईया को जरा खाने मीठे में हो जाता है, रसोईया है तो फिर तो जरा बुखार हो गया तो यहाँ के जोधपुर के डॉक्टर ने बोला टाइफाइड की दवा दे दी। अब टाइफाइड के इंजेक्शन लगे, फिर बोले टाइफाइड नहीं है मलेरिया है, ओ मेरा रसोईया तो मेरे संपर्क में रहता है ना, बोले मलेरिया है ना टाइफाइड है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। आज ठीक हो गया बेचारे ने सेवा भी की। तो जरा जरा कितना पढ़े कितना सर्टिफिकेट लाए और ये है वो है इतनी खबर नहीं पड़ती तो क्या डॉक्टर है क्या गद्दो है। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी बहन को जलंधर भगंदर हो गया था, वाड़ी एलजी हॉस्पिटल मणिनगर में एडमिट हुई। तो सुबह सुबह ऑपरेशन थिएटर वाला उसको स्ट्रेचर पे सुला के ले गया, उसका नाम था मीराबाई। ऐसे करते करते टांग का ऑपरेशन करने लगे तो बोले टांग पर काय कोई ठंडी ठंडी दवा और ये क्या लगाते। बोले बहन जी आपका पैर का ऑपरेशन होगा। बोले मेरे को तो पेट में जलंधर। बोले आपका नाम मीराबाई है। बोले मीराबाई तो है लेकिन पीछे नाम किसका है। देखा तो पीछे हेमराज नहीं है दूसरा है। अरे मुआ तुम्हारा तो क्या, अभी टांग काट देते तो तुम्हारा बाप मेरी टांग ठीक करता के वो बच गए। ऐसे मेरी नानी मर गई थी और शमशान में ले गए थे, लकड़ियों के ऊपर उसकी अर्थी रख दी। और फिर जब ऊपर लकड़ रखा तो नानी हिली। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। मैं झूठ बोलूंगा तब ने तुम काहे को मरो, मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, तुम तो जुग जुग जियो, तुम काहे को मरो। क्यों जी, तुम क्यों मरो? तो मेरी नानी हिली, अरे अरे क्या, अरे ये क्या कर रहे मोहा, मेरे ऊपर कैसा वजन रखो, तू लकड़ तो हटाए और कैंची में चीजे काट के वो गई तो कंधे पे चढ़ के और चल के घर आए। वो हेमी बाई नाम था उनका, मेरी सगी नानी थी, मेरी माँ की माँ। बोले क्या हुआ था? बोले मैं तो पता नहीं कुछ हुआ था, फिर ले गए। तो मैं उधर देखा कि बड़े बड़े जमदू तो भयंकर लोग आक्रांत कर रहे, नारकी जीव है। मैं बोला ए मुआ, तुम मेरे को इधर कैसे लाए हो? मैं तो साईं फलाने संत की शिष्या हूं और संत की दीक्षा लेने वाला नरक में नहीं जाता, तुम मेरे को नरक में कैसे लाए हो? मैंने क्या पाप किया है? मुआ साओ मुंह थे दंगी मकर बुढ़िया थी, जरा सब बोले जो सिंधी माया है हथ मथे खड़ो था, ये सिंधी माया जानती होगी। मुआ तो साओ मुंह थे ये वो पंज थोड़ा ये छाता करो। बोले तुम्हारा हेमी बाई नाम है? बोले हाँ हेमी बाई है, लेकिन कौन सी हेमी बाई, दूसरी भी होगी ना? वो जांच करा तो हेमी बाई प्रेमचंद नहीं है, हेमी बाई प्रताप सिंह है। अरे मुआ काला मुंह हो तुम्हारा, प्रताप सिंह की हेमी बाई को ले आओ, मेरे को काहे को लाए हो तुम? और यमराज तक बात गई, यमराज ने कहा जल्दी जाओ, उनके शब को कहीं फूंक ना दे तो अपना अपराध हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी मेरे को अपने शरीर में डाल गए और वो डाल गए और इतने में तो तुमने लकड़ रखा तो मेरे को पता चला। फिर मेरी नानी 39 साल जी, 40 में से एक साल कम। तो मानना पड़ेगा कि जो ये शरीर मरता है उसके बाद भी जीवात्मा रहता है, ठीक है? और जीवात्मा रहता है तो उसमें क्या होता है, 5 कर्म इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 प्राण होता है, मन और बुद्धि 17 तत्व होता है जीवात्मा, और वो सूक्ष्म होता है। विज्ञानी लोग जो मरने वाला है उसके ऊपर बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर बैठ गए कि मरने वाला जीव कैसा निकलता है, आत्मा का क्या रंग रूप है। जांच करते करते थक गए, आज तक जीव का कोई रंग नहीं मिला, कोई रूप नहीं मिला, कोई आकृति नहीं मिली, वो तो निराकार है। तो वास्तव में आप निराकार है, मैं छोगा जी हूं, मैं पूनम जी हूं, मैं रंगा जी हूं, मैं फलाना हूं, ऐ तो थारा शरीर का नाम है। ओ मैं हूं जिससे बोलते हो, वो कौन है? मन सोचता है, मन के सोच विचार बदल जाते हैं, बुद्धि के निर्णय बदल जाते हैं, फिर भी जो है नहीं बदलता है, वो कौन है? सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, वो जो रोम रोम में रम रहा है उस अपने राम स्वभाव के मूल को पीछा। गुरु के चरणों में गए, गुरु महाराज मंत्र दीक्षा दीजिए कि मारो बेड़ो पार वे जाए। गुरु ने बोला बेटा राम राम जपी, थोड़ा दिन राम राम जपा। बोले गुरु जी के भगवान का ध्यान लग जाए। बोले राम, बोलो तो राम हरे राम, प्यारे राम मेरे राम, हरे राम मेरे मेरे राम प्यारे। हरि ओ भय नाशन दुर्मति हरण,
नाशन दुर्मति हरण,
कली में हरि को नाम,
कली में हरि को नाम,
निश दिन साधक जो जपे,
निश दिन साधक जो जपे,
सफल हो वही सब काम,
सफल हो वही सब काम।
हरि ओ हरि, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं,
हरि सम जग कछु वस्तु नहीं,
प्रेम पंथ सम पंथ,
प्रेम पंथ सम पंथ,
सतगुरु सम सज्जन नहीं,
सतगुरु सम सज्जन नहीं,
गीता सम नहीं ग्रंथ,
गीता सम नहीं ग्रंथ।
हरि ओ हरि ओ, प्रभु जी ओ, प्यारे जी ओ, मेरे जी ओ, रामा जी ओ, राम राम। बेटा इस प्रकार एक जगह पर नजर स्थिर करके 15-20-25 मिनट तक भगवान की पुकार कर, तेरे मन की चंचलता मिट जाएगी, बुद्धि के दोष मिटेंगे, शरीर के रोग मिटेंगे, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी और बुद्धि में भगवान का प्रसाद प्रकट होगा, तेरे में जिज्ञासा पैदा। गुरु ने सिखाया और भगत ने करा। कुछ दिन के बाद बोले बाप जी ध्यान तो लगने लग गया और पहले जो मन की चंचलता थी वो कम हो गई, नेत्रों की चंचलता थी वो भी कम हो गई, इधर इधर बंदर की नाई देखते थे वो भी कम हो गया, और पैरों की चंचलता थी वो भी कम हो गई। धर्म कर्म से वरे नहीं और मनमाना आचरण करे उसको आवारा बोलते। जो मनमाने आचरण से आपको नियंत्रित करके सबकी भलाई और आपकी भलाई करा दे उसको धर्म बोलते। उस धर्म पालने में कष्ट सहने को तप बोलते हैं। जिसका धर्म और तप बढ़ता उसको भगवान में प्रीति होने लगती है, और भगवान में प्रीति होने से भगवान का सुख, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद और माधुर्य प्रकट होने लगता है। तो उस साधक को भगवान का सुख माधुर्य तो प्रकट हुआ लेकिन साथ साथ में बुद्धि भी बढ़ी कि बाप जी आंखों की चंचलता से शक्ति जाती थी, ऐसा ध्यान करने से अब चंचलता, हाथ की चंचलता, कई लोगों के हाथ तिनके तोड़ते रहते हैं, कान खोदते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, नाक में उंगली घुमाएंगे, अब कुछ मसाला आ गया तो दोनों उंगलियों में घुमाते रहेंगे, बात भी करते जाएंगे, चाय भी पीते रहेंगे और नाक का कफ निकला हुआ है घुमाते जाएंगे। ऐसे लोगों को मैंने कईयों को देखा बचपन में, कईयों को यूं घुमाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बातचीत करेंगे, घुमाएंगे, अरे कितनी देर के बाद यूं फेंकेंगे। ऐसे लोगों को तुमने भी देखा होगा, ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, जिसने देखा है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, देखा है ने, तुमने भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हस्त चांचल्य, बिन जरूरी हाथ गंदे करने, बिन जरूरी हाथ की शक्ति खर्च करना, ऐसे बैठे बैठे पैर हिलाना, ये पाद चांचल्य, ये छोटे मन की निशानी है। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, नेत्र हिलाना, और पुलिस विभाग के एक DIG थे, सत्संग सुना IG बन गए, दीक्षा विक्षा, बापू जी ये तो बहुत आश्चर्य होगा, मैं तो जंप मार दिया, कितने मेरे सीनियर थे, मेरे को IG की पोस्ट मिल गई, मैं क्या अभी देखते रहो, गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार, ऐसे 1, 2, 3, 7वां मिला तो दंग रह गए कि बापू ये क्या, DGP बन गए, ये पुलिस विभाग के अधिकारी जानते हैं, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो संतों की सेवा से, सत्संग से, भगवान नाम से भाग्य की रेखाएं बदल जाती। अब डीजीपी बने में क्या, अब क्या चाहिए? बोले बाप जी ये सब देख लिया, ये सब धोखा है संसार, आप तो जो आप देना चाहते हैं वही दो, हमने तो जो मांगा वो सब बेकार। दुनिया की चीजें कितनी भी मिली आखिर छूट जाती है, लेकिन जो सदा रहता है उससे एक बार मुलाकात हुई तो अपना तो भला होता है, अपने संपर्क में आने वालों का भी भला होता है। सतरती लोकांतारिती, वो तो तर जाता दूसरे को उतारने। सतृप्तो भवती, वो अपने आप में खुश रहेगा। स अमृतो भवती, वो अमृत स्वरूप ईश्वर का सुख ले। तो उस भगत को गुरु ने बताया इसे रोज ध्यान करने से उसके जीवन में बड़ा सुख शांति ज्ञान। बोले गुरु महाराज बोलते तो भगवान तो एक है, और फिर बोलते भगवान रामचंद्र जी हैं, तो भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान सूर्य है, गुरु भगवान है, माता पिता भगवान। बोले बेटा अब सुन ले, तेरी भक्ति में बरकत आई है, तेरी भक्ति में दृढ़ता आई है, तो बुद्धि योग का तू अधिकारी हो गया। बुद्धि योग का अधिकारी होने से आदमी की बस यात्रा चल पड़ी। श्रद्धा तो सब में है, देवी देवताओं को, अल्लाह को, किसी न किसी को मानते हैं, लेकिन अकेली श्रद्धा तो कहीं न कहीं घुमावे में डाल देगी। श्रद्धा के साथ बुद्धि योग होना चाहिए, अर्थात कर्म में धर्म का नियंत्रण, मन पर उपासना का रस, और बुद्धि में भगवान के विषय में जानने की इच्छा, ये बुद्धि योग होता है। तो भगवान बोलते हैं जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। अब आज तुम शांति से बैठे, मैं आपको एक बता देता हूं एक घटना बड़े पीर की। नसरुद्दीन नाम का लड़का अपने बाप को बोलता, अब्बा मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अब्बा मेरा गधा दे दो, मैं उस गधे पर सवार होकर घूमूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। अब्बा बोलते हैं कि बेटा थोड़े दिन में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 10-5 साल में, फिर मर जाऊंगा, कब्र में सोऊंगा, जब कयामत होगी मोहम्मद साहब सिफारिश करेंगे तो बिस्त मिलेगा, और तुझे तो यह मस्जिद का मालिक बना दूंगा। बोले अब्बा मैं काय को सोचूं कि मेरे अब्बा बूढ़े हो जाएं, मेरे अब्बा मर जाएं, कब्रस्तान में सोए और मैं मस्जिद का मालिक बनूं, मुझे तो अभी कुछ बनना है। रोज रोज जवान लड़का बोलता था तो अब्बा ने पैसे भी दे दिए खर्चे पानी के और गधा भी दे दिया। गधे पे घूमते घामते कुछ सप्ताह के बाद दोपहर की काली हवा लगी, ऊंट भी मर जाते गधे भी मर जाते काली हवा, जैसे आदमी को हार्ट अटैक होता है, तो फिर काली हवा लगी, गधा मरा, तो मेरे दिले जवान जनाबे आली क्या तू मेरे बोझ से थका, बचपन से तेरी मेरी दोस्ती थी, बचपन से तू मुझे प्यार करता था, मैं भी तू तुझ प्यारे के सहारे बड़ा आदमी बनना चाहता था, अब क्या होगा। अरे दोपहर को गधा मरा, रात भर रोया, दूसरे दिन भी रोए, गांव के लोगों ने देखा कि ये कहीं नसरुद्दीन मर न जाए, वो खड्डा खोद के गधा को गाड़ दिया और मुजाहिर बना दी, अगरबत्ती लगा दी, फूल चढ़ा दिए। कोई फुटकर नेता था, पुलिस विभाग जानते हैं, कोई छोटे मोटे नेता होते हैं गली गलियारे के, उसने चादर लाके लगा दी, खाना लाके खिला दिया, तखलुक का खाना खा। अब वो नेता ने चादर चढ़ा दी तो कोई पीर होगा, बोले अब क्या नाम रखें, दो पैर वाला मरता है तो उस पीर नाम रखते, ये तो चार पैर वाला है, बड़ा पीर नाम रख दिया। अब तो गांव के लोग बड़ा पीर बड़ा पीर बड़ा पीर लोग आवे, फूल चढ़ावे, माला रखे, क्या क्या करे। धीरे धीरे लोगों की मनोतियां अपने भाव से, कभी कोई काम होने वाला है, और छोरे का बुखार मिटने वाला है, और बड़े पीर के पास आ गए और बुखार मिट गया, बोले बड़े पीर ने मिटाया, और बड़े पीर को तो पता ही नहीं मैं बड़ा पीर हूं, तो गधा था। वैसे करते करते दूर दूर के लोग आने लगे, यकीन श्रद्धालु लोग आते, लेकिन श्रद्धालु आगे पीछे का नहीं सोचता तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो चार साल में तो बड़े पीर की मुजाहिर मस्जिद में बदल गई, कई कमरे बन गए, बाजारें बन गई, तकिया रजाई, खाना पीना, नानवाई की दुकानें, होटले, करियाना, हजार परिवार तो बड़े पीर के आसपास जम गया डेरा। अभी पाली और जोधपुर आते बीच में भी कोई मंदिर बन गया है और भीड़ इकट्ठी होती है। दो चार साल पहले ऐसा नहीं देखा गया था, तो लोग तो बेचारे देखा देखी करते हैं, तो श्रद्धा तो सभी में होती है और कहीं भी कोई ले जाए लग जाए, लेकिन भगवान बोलते हैं बुद्धि योग उपाश्रित, श्रद्धा के साथ आपके बुद्धि में सत्संग होना चाहिए, आपके बुद्धि में भगवान की समझ होनी चाहिए, आपके बुद्धि में भगवान का आनंद होना चाहिए, आपकी समझ में भगवान का ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम। अब चार साल बीत गए, नसरुद्दीन के बाप ने सोचा कि मेरे मस्जिद में तो आमदनी कम हो गई और कुछ कोस दूरी पर कोई बड़ा पीर की मुजाहिर है और बहुत लोग आते हैं, तो चलो हम भी देख के आए कि उधर क्या है, बड़ा पीर से कुछ जानकारी ले आए तो अपनी मस्जिद का भी कमाई बढ़ जाए धंधा। तो नसरुद्दीन का बाप कई सप्ताहों की यात्रा करते पहुंचा बड़े पीर के यहाँ, उसने भी घुटने टेके। अब उसको पता नहीं कि मेरा दिया हुआ गधा ही बड़ा पीर बना है, समझ रहे हैं, सुन रहा हो कहते। ये कथा है मुक्तानंद बाबा के ग्रंथ में विस्तार से लिखी हुई, गणेशपुरी बंबई के पास। उसने बोला कि ये बड़े पीर की मुजाहिर का जो मस्जिद का मालिक है, मेरे को उससे मिलाओ। बोले तो नहीं मिलेंगे जल्दी से, बोले मां साहब, बोले मैं जरा हाथ जोड़ता हूं, तुम ये को दिया सज्जा मिलाया तो देखा था कमरे में ठाठ माठ से अपना, जैसे महंत होते ना अपने बड़े बड़े महंत गादीपति, ऐसे वो बड़े पीर का गादीपति उसका बेटा ही बैठा था। तो बाप ने बेटे को देखा, बोले बोले मां साहब गुस्ताखी माफ हो, आपको देखकर मुझे मेरे बेटे नसरू की याद आती। हाँ, आपके गाल फूले हुए, रंग खुला हुआ है, जरा मोटे हुए हो, वो मेरा छोरा और आपकी शिकल आबे हू मिलती। चार साल हो गए वो कम वक्त गधा लेकर निकला, जिंदा है कि मर गया मेरे को पता नहीं, और मेरी मस्जिद की आमदनी भी कम हो गई, मैं इधर देखने सीखने आया हूं। नसरुद्दीन जोरों से हंसा, बोले क्यों हंसते हो जनाबे आली। बोले अब्बा मैं वही तुम्हारा नसरुद्दीन बेटा हूं। अरे हरामी तू ऐसा कैसे बड़ा आदमी बन गया। बोले आपने जो गधा दिया था ना उसी बड़े पीर की करामत है। मैं कहूंगा बड़े पीर की करामत नहीं, मुसलमानों की यकीन की करामत है। यकीन माना श्रद्धा, श्रद्धा के बिना तो मनुष्य पशु है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भगवान बोलते हैं, बुद्धि योग उपाश्रित। तो उसका बाप जोरों से हंसा, बोले अब्बा तुमको हंसी कैसे आती। बोले अपने घर में भी कोई मर गया था और हमने उसको पीर पीर करके अपना ये धंधा चालू किया, लेकिन बाप ने तो मनुष्य को पीर बना, तू तो गधे को बड़ा पीर बना दिया, तू तो मेरा भी उस्ताद है। अब उस्ताद है कि नहीं है, लेकिन मानवता के ज्ञान का गला घुट जाता है। अभी लखनऊ में तुम जाओगे तो लाइन लगती जुम्मे को, सिगरेट चढ़ाते वहां। एक सिपाही मर गया था, सैनिक सिपाही, तो सिगरेट बाज था, तो उसके परिवार वालों ने मुजाहिर बना दी। समय के वर्षों की कतारें बीती, अब उस पीर साहब को जो सिपाही था सेना में, कोई जनरल कर्नल नहीं था, सिपाही सूबेदार, बहुत छोटी पोस्ट होती है, वो सिगरेट चढ़ते हैं। अब वो सिगरेट वो पिएगा कि उसका प्रेत आत्मा पिएगा कि उसकी मुजाहिर संभालने वाले, लेकिन मुसलमान भाइयों में यकीन की तो बहादुरी है, उसका तो मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन यकीन के साथ मौलाना जलालुद्दीन रोमी की नाई सूझबूझ भी होनी चाहिए। और भी कई ऐसे मुसलमान लोग हो गए जिन्होंने यकीन के साथ अपनी सूझबूझ भी बढ़ाई। अनलाक मंसूर की सूझबूझ कितनी ऊंची थी, रहियाना तैयब की सूझबूझ कैसी ऊंची थी, गीता का ज्ञान उसको पच गया। तो अपने जीवन में भगवत संबंधी सूझबूझ बढ़ाना, जैसे राम शब्द बोलते हैं तो राम के रकार से सूर्य तत्व, मकार से चंद्र तत्व, ऐसे ओमकार शब्द बोलते हैं तो तुम्हारे मूलाधार शरीर में क्या क्या होता और 15 प्रकार की शक्तियां आपकी विकसित होती है। ऐसे शिव शब्द बोलते तो क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे ओमकार मंत्र का ऋषि भगवान नारायण है, भगवान नारायण ने खोजा ओमकार मंत्र की शक्ति, तुम भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र था। तो ऋषि भगवान नारायण है और ओमकार मंत्र जपने से अगर 120 माला जपता है 50 दिन तक और गाय के दूध की खीर बना के भगवान को सूर्य को भोग लगाता है तो 7 जन्म की दरिद्रता मिट जाती, ओमकार मंत्र में इतनी शक्ति। अब मैं आगे की कथा तुमको सुनाता हूँ। शिष्य ने बोला कि भगवान तो एक है और आप गुरुजी शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सूर्य भगवान है, तो अनेक भगवान हो। बोले बेटा अब तेरी बुद्धि में योग आ रहा है, प्रश्न पूछने की अक्ल आ रही क्या? एक राम घट घट में बोले, जो घट घट में बोल रहा है जिसकी सत्ता से वाणी उठती है सुन ले। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है शरीर का, ग माना गमनागमन होता है, व माना जिसकी शक्ति से वाणी उठती है, और न माना ये सब न हो फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता है वही भगवान है, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। गुरु महाराज तो एक राम घट घट में बोले, दूजो राम दशरथ घर डोले, तीजे राम रो सकल पसारो, चौथो राम है सबसे न्यारो। ऐसा करके तू शांत बैठा कर फिर अपना जप चालू करो। एक राम घट घट में बोले राम, दूजो राम दशरथ घर डोले राम, तीजे राम का सकल पसारा राम, चौथा राम है सबसे न्यारा राम। थोड़ा दिन किया तो बोले, फिर गुरु महाराज बोले भगवान तो 4 राम हो गए। बोले राम तो एक है लेकिन उपाधि 4 होने से 4 देखेंगे और लाख उपाधि होने से लाख होंगे। चंद्रमा तो एक है लेकिन थाली एक है तो एक चांद दिखेगा, और 10 थाली है तो 10 चांद दिखेगा, लाख थाली है तो लाख चंद्रमा दिखेगा, और दरिया में भी दिखेगा, पोखरे में भी दिखेगा, गटर में भी दिखेगा। अब गटर में चांद मैला मुटला दिखे तो चांद मैला नहीं है, गटर। ऐसे किसी के अंदर कोई पापी है तो भगवान की सत्ता तो है लेकिन उसके कर्म ऐसे दिखते। तो वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। जैसे घड़े का आकाश भी वही है और ये मेरी केबिन का या मठ का या मकान का आकाश भी वही है। मकान की उपाधि से मठ आकाश, घड़े की उपाधि से घट आकाश, मेघ की उपाधि से मेघाकाश, और सारी उपाधियां से रहित महाकाश है। तो महाकाश लेकिन घटाकाश भी वही है, मठाकाश भी वही है, मेघाकाश भी वही है। ऐसे ही कीड़ी में तू नानो लागे, कीड़ी कितनी छोटी, उसका दिमाग कितना सा होगा, फिर भी मच्छर कितना छोटा, ओ बड़ा साहब है, आईजी बना है, डीआईजी बना, डीजीपी बना, अरे गृह मंत्री है और कान के आगे मच्छर आया है। गृह मंत्री अपनी अक्ल लगा के पढ़ा लिखा है, आइडिया से यूं करता है, वो मच्छर गृह मंत्री की मुट्ठी में नहीं आता, उसको भी चकमा देके चला जाता है। ये अक्ल कहां से लाता है, गृह मंत्री है, सारा पुलिस विभाग जिसको सलाम मारता है उसको मच्छर चकमा देके चला जाता है। अरे बोले छोरों को पकड़ते नहीं, 420 हो रहे, साहब तुम मच्छर पकड़ने में विफल हो रहे हो, कहीं करामे तो मार तो खाकी वर्दी है, लोग मने तो बाढ़े थाने तो मच्छर खाकी वर्दी भी नहीं है, तारा दिन मच्छर हाले जाएंगे। वो मच्छर में अकल कौन दे रहे हो कि ए ए हाथ आयो अनाटा थी आयो तू वटा थी जा, ये अकल कौन दे रहे है। वो घट घट में बोले ज्ञान स्वरूप है राम, कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो जू, बण मावत ने माते बैठो हाकण वालो तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखूं वहां तू रो तू। बण बालक ने रोवा लागे ओ हला करो भाई डायो है ओ हे मारो छोगियो है रे मारो थोनो है रे मारो गंजो है रे रे मरो चौपियो रे मरो चौपड़े रे चौपड़ी के हलो। बण बालक ने रोवा लागो छानो राखण वालो मां में भी तू रो तू है, कर चोरी ने भागण लागो पकड़ने वालो तू रो तू, कीड़ी में तू नानो लागे हाथी में तू मोटो जू, बण महावत ने माते बैठो हाकण वालो तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखूं आ तू रो तू। कर चोरी ने भागण ने लागो पकड़ने वालो खाकी तू रो तू, थ्री स्टार तू रो तू ने दो स्टार तू रो तू, आई जी डी आई जी तू रो तू, एक एक रो एक है। कर चोरी ने भागण लागो पकड़ने वालो तू रो तू, ले जोड़ी ने मागण लागो देवा वालो दाता तू, जल थल में तू ही बिराजे भूत जंत्रे भेड़ो तू, कत कबीरा सुनो भाई साधु गुरु भी बन के बैठो तू ने सत्संगी बन के बैठो तू, एड़ो खेल रचो मेरे दाता तू रो तू। इस प्रकार का ज्ञान घर के झगड़े मिटा देगा, समाज का शोषण मिटा देगा, अशांति मिटा देगा और भगवान के साथ जल्दी योग हो जाएगा। घर में झगड़े हो तो क्या करें, झगड़े क्यों होते ये ढूंढ लो। झगड़े होते हैं घर का जो भी व्यक्ति है, जो अपना सुख चाहता है सुविधा चाहता है, वो कुटुंब का ख्याल नहीं रखता तो वो घर का परिवार का बड़ा नहीं है, वो तो अपने शरीर का भगत है। परिवार के बड़े का कर्तव्य है कि अपने ना ही सारे परिवार को खाना मिले पीना मिले इज्जत आबरू मिले तो परिवार अच्छा चले। पत्नी सोचती कि मेरी चले, पति सोचे मेरी चले, सासू बोले मेरी चले, बहू सोचे मेरी चले, ननंद बोले मेरी चले, देराणी बोले मेरी चले, जेठानी बोले मेरी चले, वो सब स्वार्थ और अहंकार के कारण झगड़े पैदा होते। तो घर को स्वर्ग में कैसे बनावे, कि घर में बुद्धि योग ले आओ। हे भगवान सब घर का जो बड़ा हो एक लोटा पानी ले लो, गुरु मंत्र जप करके अथवा भगवान के नाम का जप करके लोटा पानी पलंग के नीचे रख लो, सुबह उस लोटे में अपना मुंडा देखो, हरि ओम शांति तू सब में है सब तुझ में है, हरि ओम राम राम, जो भी भगवान में प्रीति हो घर में छांटा मारो, घर के झगड़े धीरे धीरे शांत हो। सासू का बहू का झगड़ा हो तो घर वाला बेटे की तो बेचारे की हालत खराब, माँ को बोले तो बोले देख ये तो बैरी का गुलाम हो गया छोरा के, मैं तो दुख देख के इतना बड़ा किया, अब मेरे को डांटता है औरत की बात मानता है, ये तो औरत का पिट्ठू हो गया। औरत को बोले तो बोले देखो माँ बेटे एक हो गए, मैं पराई जाई मैं तो दुखी हूं, वो बेचारो दिन भर तो अटे मजूरी करन रहते वो झगड़ो पटाए वो एक ही करना, तो क्या करना चाहिए। तू पत्नी को बोले कि देखो तू तो सब त्याग करके आई, माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, परिवार को छोड़ के आई, अब इस घर की देर सवेर तू मालकन बनेगी, ये माँ तो है मेहमान दो पांच साल दस साल रहेगी, ये नहीं होती तो मेरा जन्म भी नहीं होता, तो इसी के कारण तू घर की मालकन बनेगी, तू अपना बड़ा दिल रख तो तेरी बहुएं भी तेरी सेवा करेगी, आते तू मेरी माँ के दिल को जीतने की कला रख, मेरी माँ को थोड़ा खुश कर देगी नहीं तो मेरे को खुश नहीं करेगी तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा करके पत्नी को समझावे। और माँ को बोले, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ, वो ऐसा करती वैसा करती, लेकिन तू तो मेरे को देख, तू तो मेरी माँ है ना, ऐसे करके माँ के पग पकड़ लूँ, सासू बहू की लड़ाई गायब हो जाएगी।
बोलो रामचंद्र भगवान की।
माँ का थोड़ा पक्ष लेना पड़े, ननंद भाभी लड़ती है तो क्या करें, ननंद भाभी लड़ती है, देरानी जेठानी लड़ती है तो क्या करें, पति पत्नी लड़ते हैं तो क्या करें, घर में झगड़े हैं तो झगड़े कैसे मिटे। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। जहां भगवत कथा कीर्तन सत्संग नहीं है, वहां लोगों की बुद्धि स्वार्थ में अहंकार में फंसती है। गाय के गोबर का कंडा ले लो, उसमें घी की 10-15 बूंदे लगा के घर के लोग कमरा बंद करके उसमें प्राणायाम करे, लंबा श्वास लेके 1.25 मिनट रोके और मन में जपे ओम शांति, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे, सबका मंगल हो, ऐसा सोचे और फिर 1.25 मिनट रोके बड़ा भाई छोटा भाई लड़े तो क्या करे, माँ बाप क्या करे, तो बड़े को बोले कि बेट देख बेटा, युधिष्ठिर बड़ा था और छोटों का कैसा ख्याल रखता था, तू भी युधिष्ठिर जैसा बनने मेरा बेटे, छोटे तो छोटे, तू तो बड़ा है ना, बड़ी दिल रखने। और छोटों को अलग से समझाए कि देखो भरत लक्ष्मण राम की कैसी आज्ञा मानते थे, तू भी तो राम भैया राम जैसे, तू भरत जैसा बन जा, लक्ष्मण जैसा बन जा, अर्जुन कैसा आज्ञा मानता था, तू बड़े भाई का जरा मान रखने बेटा। बड़े बड़े को अलग से समझाए, छोटे को अलग से समझाए, घर के झगड़े शांत हो जाए। तो बड़े के सामने छोटे को डांटेंगे तो बड़ा और आरामी हो जाएगा, और छोटे के आगे बड़े को डांटेंगे तो छोटा आरामी हो जाएगा। छोटे को अलग से समझा, बड़े को अलग से समझा, और समझाने के पहले खुद अपने मन को समझा के भगवान हे प्रभु ये मेरा मन जो भी कुछ करे उसे तू प्रेरणा दे, भगवान का चिंतन करके समझो। बेटी और बहू लड़ती है तो क्या करे, बेटी को बोले के अलग से देख तेरे भाई की पत्नी है, अब सब कुछ छोड़ के इधर आई, देर सवेर तो उसका घर है, अर तू तो पराए घर जाएगी, बेटी अपना स्वभाव क्यों बिगाड़े, जरा बड़ा दिल रख, भाभी है माँ के बराबरी, तू मेरा आदर नहीं करेगी तो चलेगा, क्योंकि मैं तो तेरी माँ हूं, लेकिन वो तो तेरी बड़ी भाभी है ना, माँ के बराबर है, प्यार कर दो। और बहू को बोलो कि बहू रानी देख तू तो घर की मालकन है, ये तो बिचारी मेहमान है, अब इसके मन को तू जीत ले, थोड़े दिन में तो जाएगी, 1-2 साल 4 साल की मेहमान है, क्यों कर अपना स्वभाव बिगाड़े, ये तो पराए घर जाएगी, ये तो तेरा घर है। सासू अथवा ससरा बहू को अलग से प्यार से समझाए और बेटी को अलग, झगड़े शांत हो। अगर ननंद घर में आई है, बाल बच्चे ले आई है और घर में झगड़ा हो गया है, भाभी के छोरे और ननंद के छोरे लड़ते झगड़ते तो काय करो, भाभी को चाहिए कि ननंद के छोरों को ज्यादा प्यार करें, क्योंकि थोड़े दिन के लिए आई है मेहमान है, अपने छोरे छोरियों को समझाए कि तो मेहमान है, बड़ा दिल रखो बेटे, अपने मेहमान है। और ननंद घर से जाती हो तो माँ उसको छुपा छुपा के रुपया पैसा गहना गैंठा दे तो बेटी बोले कि माँ तुम दोगी ने छुपा छुपा के तो चोरी का होगा, तुम बुढ़ापा क्यों खराब करो, भले चीज तुम्हारी है लेकिन भाभी के हाथ से दो तो भाभी को लगेगा कि मैंने दी, और मैं भी बोलूंगा कि मेरी भाभी मेरे को बहुत देती है, बहुत स्नेह करती, तो भाभी का औदार्य खिलेगा, और नहीं तो तुम चोरी छुपी दोगे तो मेरा कब तक है, मेरे को तो तुम तो माँ बुरा मत मानना, तुम तो मैं मानो देर सबेर तो मेरे को भाई के घर आना है तो भाभी से मिल के रहना पड़ेगा क्या? तो तुम जरा भाभी को आगे करके मेरे को कुछ जो देती हो तो दो न, तो हमारा प्रेम बना रहेगा, तो नंद भाभी का प्रेम हो जाएगा। एक लड़की की शादी हो गई और उसकी सास इतनी इतनी लुची थी कि बाप रे बाप, वो अपनी दादी सास को बहुत दुख देती थी। दादी सास को तो फटी खटी खटिया पे फेंक दिया, ठीकरे में खाना देवे, पुराना कपड़ा देवे और दिन भर मेणा मारे। और छोरी कमला ने देखा कि मेरी सासू तो अपनी सासू से बहुत बुरा व्यवहार करती, और मैं बोलूंगा कि दादी माँ से बुरा व्यवहार नहीं करो तो मेरे पीछे लग जाएगी। चल रही निगुड़ी, तू तो कल की आई है, तू तो छोरी है, मेरे को क्या ज्ञान देती है? हे भगवान, मैं क्या करूं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान निहारा। भगवान ही हमको प्रेम करते हैं, भगवान को पुकारते ने जैसे बच्चा माँ को पुकारे ने, ऐसे आप राम तो भगवान समझे कि मुझे पुकारता है। ओम हरि ओम, अंदर से भगवान खुश हो, फिर शांत हो जाओ तो आपकी बुद्धि में भगवान अपना योग दे देंगे, समझ दे देंगे। कमला की समझ आई कि दादी सासू के पास रहने लगे, उसको पंखा आके उसके पैर दबावे, तो सासू ने देखा कि तू मेरी बहू होकर ये डोकरी के पास क्यों बैठती, मेरे पास क्यों नहीं बैठती? बोले सासू जी, मैं आपके पास बैठती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, उधर जरा ज्यादा बैठती हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा कि जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी उम्र वालों के साथ बैठते ने तो काम विकार की बातें होती, किसी की निंदा होती, किसी की ईर्ष्या होती, पाप बढ़ता है, और बड़ों के सामने बैठते तो मर्यादा और संयम बढ़ता है, और एकदम बूढ़े बुजुर्गों के सामने बैठते तो धर्म बढ़ता है। तो सासू जी, तुम तो जीवन भर हो, दादी माँ तो कब चले जाए, तो मैं तो जरा धर्म लाभ कर लूं, और आप और हम दोनों बैठा करें। बोले मैं नहीं बैठती डोकरी के सामने, तेरे को क्या मिलता है? बोले इस घर की रीत रिवाज सीखने को मिलेगा दादी माँ से। अच्छा तो ठीकरे क्यों इकट्ठा करते हैं? कि इस घर की रीत रिवाज सीख रहे हूं, तो सासू जी तुम अपनी सासू को ठीकरे में देती हो तो तुम भी जब बूढ़ी हो जाओगी और मैं भी जरा बड़ी उम्र की हो जाऊंगी तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपको ठीकरे में भोजन दूं। अरे बोले नहीं नहीं, मैं तो थाली कौन मांझे इस डोकरी की, इसलिए ठीकरे में देती। बोले तो थाली तो मैं मांझ लूंगी सासू जी, आपके नाम से मैं ही थाली मांझ लूं। बोले अच्छा थाली तू मांझ लेना, थाली में देना, ठीकरे में नहीं देना, नहीं तो मेरे को भी ठीकरे में खाना पड़ेगा। फिर पुराने कपड़े इकट्ठे करने लगी। बोली पुराने कपड़े क्यों इकट्ठे करती? बोले तू अपन तुम आप सासू जी बुरा मत मानो, मैं ऐसा जानती हूँ कि इस घर में जो बूढ़ी डोकरी हो जाए उसको फटी खाट, फटी चादर, फटे कपड़े, ठीकरे में भोजन, ऐसा कोई रिवाज होगा? बोले नहीं नहीं ऐसा रिवाज नहीं है, ऐसा रिवाज नहीं, तू तो अच्छा अच्छा दिया कर। धीरे धीरे दादी माँ को तो अच्छा अच्छा मिलने लगा, आशीर्वाद आने लगा, और सासू को सत्संग मिलने लगा। सासू को भी दो पैर दबा देती, चंपी कर देती, प्रणाम कर देती, सासू दादी सासू को भी कर देती। धीरे धीरे आप अमानी रह के दूसरे को मान देने वाला आदमी सबको प्यारा लगता है। पतिदेव के लिए सीजन के अनुसार भोजन बनाती, सुबह जल्दी उठती और थोड़ी देर भगवान में शांत होती तो बुद्धि योग मिलता। रात को सोते समय मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, सुख भी मिथ्या है, संसार स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला प्रभु अपना है। राम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 ओम। ऐसा खुशी करके सोती थी। फिर सोते समय श्वास अंदर जाए तो गुरु ने बताया था राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो एक। तो भगवान का नाम और शांति से उसका हृदय पवित्र हो गया, उसकी आंखों से पवित्रता, उसकी वाणी से पवित्रता, उसके कर्म से पवित्रता। घर के लोग तो वो कमला बहू के भगत बन गए। ससरा भी उसका आदर करे, सासू भी आदर करे, दादी सासू और पति भी उसकी इज्जत करे, अड़ोस पड़ोस की माइयों में बोले ये तो लड़की नहीं है, अरे ये तो कोई देवी है, अरे बोले मैं तो देवी देवी कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुरु महाराज का सत्संग सुनने गई थी। किससे दूसरे को मान देकर दूसरे का दिल प्रसन्न करो तो वही भगवान की पूजा है, बाकी बड़ा पीर और छोटा पीर और ये सब अपने को फंसाना नहीं है। जिसको सासू में भगवान नहीं दिखे, ससरा में भगवान नहीं दिखे, पुत्र में भगवान नहीं दिखे, पति में भगवान नहीं दिखे, पड़ोसी में भगवान नहीं दिखे, उसको बड़ा पीर में अल्लाह कहाँ दिखेगा, वो तो गधे की हड्डियां पड़ी है क्या। ये सब कथा सुन सुन के मेरी अक्ल बढ़ गई तो मैं बुद्धि योग का आश्रय लिया, इसीलिए मेरे ये सब सत्संग की महिमा है। फिर तो अड़ोस पड़ोस की लड़कियां, अड़ोस पड़ोस की माया भी आके कमला के शाम पास बैठे, शाम को रोज सत्संग मंडल बनाया, सत्संग करे, कीर्तन करे। जब मायके जाए तो मायके में सब बातें बनाए तो कई लड़कियां को अब माँ अपनी लड़कियां उसके पास भेजती कि देखो इसकी सासू कितनी लुच्ची थी, इसकी सासू भगत बन गई, दादी सासू का भला हो गया, तुम भी पराए घर जाओ तो हमको फरियाद मत करना, कैसी भी परिस्थिति आए दुख सहिष्णुता लाना ये तप हो जाएगा, भगवान को पाने की इच्छा रखना ये जिज्ञासा हो जाएगा, और भगवान का नाम लेना और भगवान के नाते कर्म करना ये कर्म योग हो जाएगा। तो पड़ोस पड़ोस के लोगों को कमला के सत्संग से अपने बेटियों को सुधारने का अवसर मिल गया, अपने बहुओं को सुधारने का अवसर मिल गया। तो एक सत्संग कितने आदमियों को सुधारता है, कितने परिवार को सुधारता है। तो जो सत्संग करते हैं करवाते हैं, सत्संग करने कराने में भागीदार होते हैं, उसका तो साथ साथ पीढ़ी तर जाती। अन्न दान करना चाहिए, अन्न दान, भूमि दान, सुवर्ण दान, गौ दान, गौरस दान, कन्या दान, विद्या दान, एक कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन सत्संग दान तो सर्वोपरि दान है। विद्या दान किया, डॉक्टर बन गया तो भी झूठे मूठे ऑपरेशन बता के पैसा लूटे, है तो लड़का बोले छोरी है अबॉर्शन करा लो, है तो कोई बुखार बोले टाइफाइड हो गया, है तो टाइफाइड बोले मलेरिया हो गया, पैसा लूटे। विद्या दान तो किया लेकिन सत्संग नहीं है तो मरीजों को लूटेगा, फिर उसके छोरे छोरी लवर लवरी बन के उसका दिल चलाएंगे। हराम का पैसा घर में आता है ना तो छोरों की बुद्धि खराबी हो जाती, जैसा अन्न तैसा मन। हराम का अन्न आएगा ना, बेईमानी का अन्न आएगा तो छोरे छोरियों का मन अपना मन परेशान होता है। तो जो सत्संग करता है करवाता है, दूसरे को सत्संग में ले आता है, उसको तो भगवान शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा। शिव जी बोलते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, भगवान की प्रीति है। आप बोली जो सब शिव जी के वचन है, धन्य माता पिता धन्यो धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव गोत्रम धन्यम धन्या च वसुधा देवी धन्या च यत्र स्याद गुरु भक्ततः। हे पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। भगवान को अपना मान के, अपने को भगवान का मान के ऐसा उपासना करो जिससे भगवान अपने को बुद्धि योग दे देवे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी सके कोई जान्य रहा। पति पत्नी का संबंध विकार की प्रधानता से, सेठ नौकर का संबंध पैसे और काम की प्रधानता से, नेता और जनता का संबंध वोट और सहूलत की प्रधानता से है, मित्र मित्र का संबंध भी एक दूसरे की सहूलत की प्रधानता, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध शाश्वत है और मंगल की प्रधानता से है। आपका भगवान के साथ जो संबंध है उसको कोई तोड़ नहीं सकता और संसार के संबंध को कोई सदा रख नहीं सकता, जो छूटने वाला संबंध है उसका सदुपयोग करो, माता की सेवा कर लो, पिति की सेवा कर लो, किसी की सेवा कर लो, और बदले में शांति भगवान की, जिसके साथ अपना शाश्वत संबंध है उसमें शांत होना सीखो, उसके साथ अपनत्व का अनुभव करो। भगवान मेरे हैं, सतरूप है, चेतन रूप है, पति सुख दे ऐसी कंगाल मत बनना बेटी, पत्नी से सुख लो ऐसा चमड़े का भगत मत बनना। जो बाहर से सुख लेता है वो संसारी, तुम महान बन रहे हो कि तुच्छ बन रहे हो उसका थर्मामीटर क्या है? जब इच्छा वासना और सुविधा भोग कर तुमको मजा आता है तो समझ लो कि आप तुच्छ चीजों के तरफ, तुच्छता के तरफ जा रहे हो, लेकिन उन चीजों का उपयोग करके दूसरों की भलाई में लगाकर अंतरात्मा की शांति मिल रही। इच्छा कम, इच्छा पूर्ति से सुख नहीं मिलता, लेकिन इच्छा निवृत्ति से सुख मिलता है तो समझो आपका बुद्धि योग शुरू हो गया, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। दूसरे की भलाई से आपको सुख मिलता है तो समझ लो कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है, और दूसरे का बिगाड़ने से आपको सुख मिलता है तो समझो शैतान आपको दबोचने वाला है। जो दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहता है उसको बड़े बड़े दुख सहने पड़ते, लेकिन जो दूसरों के दुख हर के भगवान की प्रीति चाहता है उसको बड़े में बड़े परम सुख की प्राप्ति होने वाली। इसलिए सुख का गुलाम मत बनो। झगड़े क्यों होते हैं? शरीर में अहंता करते हैं। हकीकत में शरीर तो मरने वाला पुतला है, और वस्तुओं में ममता कर दी, जो वस्तु छोड़ के जानी उसको मेरी मेरी मानकर झगड़े होते, जो शरीर मरने वाला है उसको उसके बड़प्पन में झगड़े होते। शरीर का गर्व गुमान छोड़ दे, वस्तुओं में आसक्ति छोड़ दे, झगड़े शांत हो जाएंगे। और जैसी रीति बताई है सब एक दूसरे से मधुर व्यवहार करो। मधुर व्यवहार नाम की थोड़ी सी एक छोटी सी पुस्तक ले जाना, 50 पैसे की होगी कि 1 रुपए की होगी, वो पढ़ना तो घर के झगड़े तो मिटेंगे, पड़ोस के झगड़े भी मिटेंगे।
जीभ तालू में लगा दो, श्वास रोक के रखना, पेट अंदर खींच लो, नाभि से नीचे के हिस्से को संकोचन कर लो। ये लगता तो छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बहुत प्रकार के दोषों को हरेगा और स्मृति योग में बहुत बड़ी भारी मदद करेगा। अर्जुन बोलता ना लब्धा ज्ञान, मष्टो मोह स्मृति लब्धवा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ दो। 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, उसमें से 22 नाड़ियां मुख्य है, 10 दाही और 10 बाही और 20 एक ब्रह्म नाड़ी, 21 और 22वीं स्मृति नाड़ी। जीभ तालू में लगाकर स्मृति नाड़ी को सजा करो। ज्ञान तो सुनते हो, बहुत जल्दी फायदा होगा। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और लो, श्वास रोक दो, पेट को अंदर कर दो, नाभि को अंदर खींचो, नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर खींचो, इससे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागेगी, तुम्हारी भक्ति में बुद्धि योग आएगा। श्रद्धा तो बहुत जगह करते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है, लेकिन भगवान श्रद्धालुओं को जो देना चाहते हैं बुद्धि योग, उस बुद्धि योग का खजाना भी तुम्हें प्राप्त हो। 35 सेकंड हो रहे हैं, रोक के रखना, इससे रोग भी मिटेंगे, शोक भी मिटेंगे, पाप भी मिटेंगे, ताप भी मिटेंगे, और बुद्धि योग में अच्छी गति होगी। रोक के रखना, फेफड़ों के बंद छिद्र भी विकसित होंगे। 1 मिनट होने की तैयारी है, 1.25 मिनट अगर रोक सकते हो और रोज ऐसा 7 बार कर सकते हैं तो 7 दिन के अंदर तो आपके स्वभाव में, तन में, मन में परिवर्तन। 1.25 मिनट अंदर रोके, 40 सेकंड बाहर रोके। अब ले लो श्वास, फिर से गहरा श्वास लो, लो लो और लो।
मैं भगवान कहूं, भगवान सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, ओमकार उनकी स्वाभाविक ध्वनि है। होठ बंद रखेंगे और कंठ में भगवान के नाम का ओमकार का उच्चारण करेंगे, ये विशुद्धाख्या केंद्र साधना है। डोकी लाओ, फिर से गहरा सांस लो, दिन में ऐसा 2-3 बार सुबह खाली पेट करो अथवा शाम को। इससे बुद्धि योग में, स्मृति योग में तो फायदा होगा, ध्यान भजन में भी मदद मिलेगी। किसी के पास कुछ नहीं होता उसको देखकर हंसती है दुनिया, किसी के पास बहुत कुछ होता है तो उसको देखकर जलती है दुनिया। लेकिन जिसको बुद्धि योग मिल गया, भगवत रस, भगवत ज्ञान, भगवत माधुर्य, निष्काम कर्म मिल गया, उसके लिए तो तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया।